أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. آج مجلس صحت کی طرف سے جو کبڈی کا ٹورنامنٹ منعقد کروایا گیا اس کا آخری دن تھا. مجلس صحت کے قیام سے متعلق میں جماعت کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس صحت کا قیام ایک وسیع پروگرام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اور وہ وسیع پروگرام جو میرے پیش نظر ہے وہ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت میں درج ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. کبھی دنیا میں اتنی مختصر گفتگو میں اتنا وسیع پروگرام کسی کو نہیں دیا گیا جتنا اس چھوٹی سی آیت میں مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہر قوم کا ایک نصب العین ہوا کرتا ہے, ایک مقصود اور مطلوب ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے مسلمانوں, تمہارے لیے میں یہ نصب العین مقرر کرتا ہوں کہ ہر اچھی بات میں ہر دوسرے سے آگے نکل جاؤ. کتنا عظیم الشان, کتنا وسیع پروگرام ہے اور کتنے اعلی مقاصد ہیں اس پروگرام کے ہر حصے کے. یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم صرف عبادتوں میں آگے نکل جاؤ یا صرف فلاں خوبی کو اختیار کر لو یا فلاں خوبی کو اختیار کر لو, بلکہ فرمایا کہ تمہارا نصب العین ہے آگے بڑھنا اور ہر خوبی میں آگے بڑھ جانا. تو دیکھیے, ایک مختصر سی بات میں تمام دنیا کی ہر بھلائی کو لپیٹ لیا گیا اور اس بھلائی کے اعلیٰ رخ کو بیان کیا گیا. اس بھلائی کی میں سے بھی چوٹی کا جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے مقرر فرما دیا گیا. بس اس نقطۂ نگاہ سے جماعت احمدیہ کے سامنے جو قرآن کریم نے منصوبہ رکھا ہے वो हर इंसानी जिंदगी की दिलचस्पी पर हावी है, वो दीन पर भी हावी है और दुनिया पर भी हावी है, वो माशियात पर भी हावी है और इक्तसादियात पर भी हावी है और तमद्दुन पर भी हावी है और तहजीब पर भी हावी है, वो हावी है हमारी तिजारत पर, वो हावी है हमारे साइंस पर, वो हावी है हमारी सन्नत और हिरफत पर, और वो हमारी खेलों पर भी हावी है। और कोई एक पहलू ऐसा नहीं इंसानी जिंदगी की दिलचस्पी का जो सोचा जा सकता हो और ये आयत उसमें मुसलमान को आगे बढ़ने की तालीम न दे रही हो। बस इस नुक्ते निगाह से, इस बुलंद मकसद को पेश नजर रखते हुए मजलिसे सेहत को कायम किया गया, और दुनिया की तमाम वो खेलें जो इस वक्त कहीं किसी रंग में खेली जाती हैं और इतना मुकाम हासिल कर चुकी हैं कि इंसान के नज़दीक वो बैनुल अक्वामी हैसियत इख्तियार कर सकती हैं, उनको मजलिस सेहत के सुपुर्द किया गया है। और उसके अलावा बाज़ कौमी खेलों को भी, जो अभी तक रिवाज तो नहीं पा गई दुनिया में लेकिन अपनी ज़ात में वो इस काबिल हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी नश्वनुमा की तरफ तवज्जो दी जाए। कबड्डी भी उन्हीं खेलों में से एक खेल है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि लाशौरी तौर पर हम एहसास से कमतरी का शिकार रहते हैं। वो आज़ाद कौमें जिनको दुनिया पर ज़ाहरी गलबा बख्शा गया, उनकी खेलों को तो इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और अपनी खेलों को, ख़ा वो सेहत मंदी के लिहाज से ज़्यादा मुफीद हों, ख़ा कम खर्च पर बहुत बेहतर फ़ायदा बख्श खेले हों, बहुत बेहतर रंग में फ़ायदा बख्श खेले हों, तब भी ये समझा जाता है कि इन खेलों का क्या है। नतीजा ये निकला कि तरक्की याफ्ता और मगरबी कौमों की हर खेल पसमानदा इलाकों में भी राइज कर दी गई, और पसमानदा इलाकों की अच्छी खेलें मगरब ने रद्द कर दी, गोया ये जाहलों की खेलें हैं। अब गुल्ली डंडा है मसलन, ये हमारे तहजीब का एक बदकिस्मती से हिस्सा बन गया कि गुल्ली डंडे को वक्त के ज़िया के मुतबादिल शुमार किया गया कि जी वो क्या है, वो तो गुल्ली डंडा खेलता है। गोया गुल्ली डंडा खेलना एक नहायत ही लगव और फजूल हरकत है जो इस काबिल है कि उसकी हर तरह मुजम्मत की जाए। और बेसबॉल खेलने वालों ने और इसी किस्म की दूसरी खेलें खेलने वालों ने उनको इतनी अजमत दी, इतना मुकाम दिया कि अब वो दुनिया की चोटी की खेलों में से शुमार होती है। मीरो डब्बा एक खेल थी हमारे यहाँ, वो भी एक बास पहलुओं से बेसबॉल से मिलती है जो अमेरिका में खेला जाता है, और उसको तो खेलना कोई ख़ास काबिल फ़ख्र नहीं समझा जाता, बल्कि अमूमन वही लोग खेलते हैं जिनको और कुछ ना मयसर हो। हालांकि उसमें भी बहुत ही खूबी के पहलू मौजूद हैं इंसान की सेहत को तरक्की देने के लिए, उसमें फुर्ती पैदा करने के लिए, एक दूसरे से चुस्ती का मुकाबला करने के लिए, उसमें बहुत से अनासर शामिल हैं। तो जमात अहमदिया को ये चाहिए कि अपने अपने मुल्क में जहां जहां जमात है वहां की मुकामी खेलों को भी फ़रूग दे, और उन खेलों को भी फ़रूग दे जो दुनिया में इस वक्त मुसल्लम हो चुकी हैं। हमें ये चाहिए कि हर खेल में बाकी सबसे आगे बढ़ें, इसलिए जो मुसलमा खेलें हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि आहिस्ता आहिस्ता कबड्डी अफ्रीका में भी राइज हो सकती है, इंडोनेशिया में भी राइज हो सकती है, मौसम के लिहाज से जहां जहां ये इंसान इसको कुदरती तौर पर तभी तौर पर खेल सकता है वहां राइज हो जानी चाहिए। लेकिन जो मुरवजा खेलें दुनिया को मुसल्लम हो चुकी हैं हम उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और लाजमन उन मैदानों में भी उनको शिकस्त देनी होगी। ख्वाहिश मेरी ये है कि हर खेल में मुसलमान आगे आए, और ये ख्वाहिश इस्लामी तारीख में एक सुन्नत के तौर पर हमें मिलती है, सुन्नत औलिया के तौर पर नजर आती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तो सारी जिंदगी फस्तबिकुल खैरात का एक अजीम शान नमूना थी, लेकिन मुख्तलिफ उम्मत के बुजुर्गों ने मुख्तलिफ एक चीजों को पकड़ा और उनमें भी ऐसे ऐसे नमूने दिखाए जो तारीख का एक दरख्शंदा बाब बन गए। उनमें से ऐसे हमारे हिंदुस्तान में भी पैदा हुए बुजुर्ग जिनका बराह रास्त खेलों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन किसी जगह से गुजर रहे थे तो पता लगा कि एक गैर मुस्लिम फलां खेल में इतनी तरक्की कर गया है कि वो फख्र के साथ ये ऐलान करता है कि आज दुनिया का कोई मजहब वाला भी ऐसा नहीं जो मुझे शिकस्त दे सके। उनके मुतालिक आता है कि उन्होंने सफर का इरादा मुलतवी कर दिया। जितनी मुद्दत उनको उस खेल में कमाल हासिल नहीं हो गया वो वहीं ठहरे रहे, कई साल लगे होंगे उनको, और जब तक उसको शिकस्त देकर ये नहीं कहा कि मुसलमान एक ऐसा भी मौजूद है जो तुम्हारी तुम्हें शिकस्त देकर तुम्हारे इस गुरूर को तोड़ सकता है कि तुम्हारे मजहब के मानने वाले बाकियों से इस मामले में आ गए। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी ये किसी किस्म का वाकया आगाज जवानी का मिलता है। तो ये नमूने हैं जिनकी हमें पैरवी करनी है और पैरवी करके अपने कदम को आगे बढ़ाना है। मजलिस सेहत इसी गरज से कायम की गई, और तमाम दुनिया के अहमदियों को ये चाहिए कि जहां जहां कोई अच्छा खिलाड़ी किसी खेल का हो वो मजलिस सेहत मरकजिया को इत्तला दे, ताकि बाकायदा जब्त के साथ उनको मुख्तलिफ टीमों में ढाला जाए और फिर कोशिश की जाए जहां तक मुमकिन हो कि हर खेल की एक अहमदी टीम दुनिया में पैदा हो जाए। ये दुरुस्त है कि मौजूदा जो खेलों का तरीक राइज है उसके लिहाज से हम इंटरनेशनल मुकाबलों में बैनुल अक्वामी मुकाबलों में अहमदी टीम के तौर पर इनको दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन ना भी दाखिल कर सकें तब भी ये एहसास एक नहायत ही आला पैमाने की एक अहमदी टीम तैयार हो चुकी है जो वाकयातन दुनिया की सफे अव्वल की टीमों में है, ये एहसास ही एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये एहसास हमारे अंदर अल्लाह ताला की हम्द को उजागर करेगा, हम्द की तरफ तवज्जो पैदा करेगा, और हम खुदा का शुक्र करेंगे और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे कि कितना शानदार मतमय नजर हमारे लिए कायम फरमाया था और उसकी पैरवी की राहें भी हम पर आसान कर दी। और आज हम दुनिया में कह सकते हैं कि फस्तबिकुल खैरात के मतमय नजर के पेश नजर हम फलां चीज में सबकत ले गए। फिर बैनुल अक्वामी मुकाबलों में जहां मेडल मिलते हैं वहां बेशक ऐसी टीमें दाखिल ना हो सकें, लेकिन दुनिया की कोई क्लब भी किसी नाम पर भी दुनिया की अच्छी टीमों को चैलेंज कर सकती है और खेल सकती है। इसलिए अमलन दुनिया के सामने हम ये साबित जरूर कर सकते हैं कि खा तुम मेडल दो या ना दो, खा तुम्हारा खेलों का निजाम हमें बहसियत अहमदी टीम के रेकग्नाइज करे या ना करे, लेकिन अमरे वाकया ये है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इस मैदान में भी बाकी सबसे आगे बढ़ गए हैं। ये वो आखिरी मकसद है जिसे हमें इंशाल्लाह ताला हर हिस्से में पूरा करना है, लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया था यह सिर्फ एक छोटा सा शोबा है। हमें हर नेकी में आगे बढ़ना है और नेकी की हर शक्ल में आगे बढ़ना है। इसीलिए गरज से मजलिस शूरा में मैंने तवज्जो दिलाई थी कि हमें ट्रेड और इंडस्ट्री में भी तमाम दुनिया से आगे निकलना है, साइंस में भी आगे निकलना है, और साइंस के नतीजे में जो इंसान अमलन सनती इजादात करता है और इंडस्ट्री कायम करता है उसमें भी जमात अहमदिया को अल्लाह ताला के फजल से सबसे आगे निकलना होगा। चुनांचे उसके लिए एक मरकजी सेल कायम कर दिया गया है फिलहाल तहरीक-ए-जदीद में, और सदर अंजुम में भी इंशाल्लाह कायम किया जाएगा। फिर वो मुश्तरका तौर पर इस बात पर गौर करेंगे कि तमाम दुनिया के अहमदी सनतकारों के दिमाग से इस्तेफादा किया जाए, तमाम दुनिया के अहमदी ताजरों के दिमाग से इस्तेफादा किया जाए, तमाम दुनिया के अहमदी साइंसदानों को इस तरफ मुतवज्जे किया जाए कि वो सिर्फ नजरियाती तौर पर साइंसदान ना रहें बल्कि ऐसे फ़ाल सोचने वाले और हर वक्त नई चीज़ों की ईजाद में मुनहमिक साइंसदान बने कि जिनकी कुव्वत फिक्र को जमात अहमदिया कुव्वत अमल में ढाले और उनकी ईजादात से इस्तेफादा करे। और सारी दुनिया में जिस तरह बाज़ कौमें मशहूर हैं जापानी अपने आला फिक्र और लतीफ़ फिक्र के नतीजे में और फिर उस फिक्र के नतीजे में आला सनतें पैदा करने के लिहाज से, इसी तरह अमेरिकन या यूरोप की दूसरी कौमें हैं, जर्मनी है, जो ख़ास तौर पर इन चीज़ों में आगे निकलाए हैं, उसी तरह जमात अहमदिया के साइंसदान भी एक अहमदी साइंसदान के लिहाज से एक नाम पैदा कर लें, अहमदी इजादात पर अहमदियत की ऐसी छाप हो कि जिससे मालूम हो कि यह चीज़ लाजमन अपनी नौ में सबसे बेहतर है। और इस चीज़ के लिए लाजमन दयानतदारी की भी बहुत ज़रूरत हुआ करती है, क्योंकि साइंसदान तो एक ईजाद पेश कर दिया करता है, सनतकार अगर दयानतदार ना हो तो उस ईजाद को ज़ाया भी कर सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है, उसका एक वक़ार कायम भी कर सकता है और वक़ार खो भी सकता है। और दयानतदारी सिर्फ यही ज़रूरी नहीं बल्कि हर दूसरे मैदान में ज़रूरी है, खेल में भी इसी तरह ज़रूरी है, दयानतदारी के बगैर कोई इंसान किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकता, तिजारत में बहुत ज़रूरी है। बस अहमदी तुजार को भी और अहमदी सनतकारों को भी और अहमदी साइंसदानों को भी और हर मैदान में आगे बढ़ने का इरादा करने वालों को लाजमन अपने दयानत के मेयार को भी बढ़ाना होगा। बहुत से पसमानदा मुल्क ऐसे हैं जिनको बड़े गहरे इक्तिसादी नुकसान पहुंचे हैं बददियानतियों की वजह से, बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। बहुत अच्छी अच्छी ऐसी सनतें यहां मौजूद थीं कि जिनके जरिए तमाम दुनिया की मंडियों पर कब्जा किया जा सकता था, मसलन सियालकोट में खेलों की सनत थी और औजारों की सनत थी और है भी, ये दोनों सनतें अभी तक मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह ये तमाम दुनिया की मंडियों पर काबिज हो सकती थी उस तरह नहीं हो सकी। और मैंने बाहर जब जायजा लिया तो मालूम हुआ कि अक्सर नुकसान पाकिस्तान को ताजरों की या सनतकारों की बददियानती के नतीजे में पहुंचा है। बस जब जमात अहमदिया को इससे मैं कहता हूं कि वो सनत में भी सबसे आगे निकल जाएं और तिजारत में भी सबसे आगे निकल जाएं और उसके लिए मरकज में ऐसे सेल कायम किए जाएं जहां इन सब के तबादला ख्यालात के लिए एक मरकज कायम हो और एक दूसरे के ख्यालात से इस्तेफादे का निज़ाम कायम हो, तो ये हो नहीं सकता जब तक अहमदियत के दयानत के मेयार को भी ऊंचा ना किया जाए। इसलिए हमारे सारे तुजार को चाहिए कि वो लाजमन एक डिवोशन के साथ, एक वक्फ की रूह के साथ अपने दयानत के मेयार को बुलंद करें और तमाम सनतकारों को भी चाहिए कि वो इसी रूह के साथ अपनी सनत के मेयार को बुलंद करें, सनत में अपनी दयानत के मेयार को बुलंद करें। अमरे वाकया ये है कि अगर हम महज लिल्लाह ये करेंगे, अगर कुरान करीम की इस आयत को मलहूज रखेंगे और उसकी खातिर ये काम करेंगे तो ये दुरुस्त है कि हमारी सन्नतों को भी फायदा पहुंचेगा, हमारी तिजारतों को भी फायदा पहुंचेगा, हमारी तबाबतों को भी फायदा पहुंचेगा, हमारे इक्तसादियात के हर शोबा इससे फायदा उठाएगा। लेकिन अगर मकसूद ये होगा कि अल्लाह के हुक्म के ताबे हमने इस्लाम का झंडा बुलंद करना है तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अल्लाह हमसे राजी होगा, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी कोशिशों को बहुत बरकत के फल लगेंगे। और जब इंसानी मेहनत के साथ अल्लाह ताला की रहमत शामिल हो जाया करती है तो दुनिया की कोई कौम उसको शिकस्त नहीं फिर दे सकती। ये एक ऐसा उंसुर है जो दुनिया की तिजारतों में भी नहीं नजर आता आपको, उनकी सनतों में भी नजर नहीं आता। उनके इल्म तिब में भी नहीं पाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ आहजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन गुलामों को अता होगा जो खुदा की खातिर ये काम करते हैं और फिर दुआओं के जरिए अल्लाह ताला से हमेशा मदद मांगते रहते हैं। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ऐसी गैर मामूली बरकतें अता फरमाता है और रोजमर्रा के हमारे तजर्बे में है कि आम दुनिया के कानून उसको नहीं समझ सकते। मसलन हमारे तबीब जो अफ्रीका में काम कर रहे हैं, बकसरत वो ये ऐसे वाकयात पेश करते रहते हैं कि बज़ाहिर उनसे बहुत बेहतर दुनिया के आला दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए तबीब भी वहाँ मौजूद थे, बज़ाहिर उनसे बहुत बेहतर हस्पताल भी वहाँ मौजूद थे जिन पर करोड़ों करोड़ रुपया हुकूमतों का खर्च हो रहा था, लेकिन बड़े बड़े चोटी के मरीज जिनको वहां मुफ्त इलाज मुयस्सर आ सकता था हुकूमत के करिंदा होने के लिहाज से, वो उन हस्पतालों को छोड़कर अहमदी हस्पतालों की तरफ मायल हुए। ऐसे ऐसे अहमदी डॉक्टरों से उन्होंने ऑपरेशन करवाए और ऐसे संजीदा ऐसे नौयत के ऑपरेशन करवाए कि जिनमें जिंदगी और मौत एक बहुत ही बारीक धागे के दरमियान लटकी होती है। लेकिन आला हस्पतालों को छोड़कर वो एक छोटी सी कुटिया में आ गए जहां खाली एक मेज पड़ी होती थी और पूरी तरह के औजार भी मुहैया नहीं थे, पूरी तरह रोशनी का इंतजाम भी नहीं था, पूरी तरह डिसइंफेक्ट करने का इंतजाम भी नहीं था। उन्होंने कहा जी हम आपसे ऑपरेशन करवाएंगे, हम वहां से नहीं करवाएंगे। डॉक्टरों ने बाज़ दफा ताजुब से पूछा कि ये तुम क्या हरकत कर रहे हो। उन्होंने कहा हरकत हम ये कर रहे हैं कि हमें इतना पता है ये दुनियावी वजाहत और दुनियावी सामान तो वहां हैं लेकिन शिफा आपके पास है, क्योंकि जितने मरीज आते हैं हमें यही पता लगता है कि जो आपके पास आते हैं वो अल्लाह के फजल से शिफा पा जाते हैं, जो बड़े दूसरे अस्पतालों में जाते हैं वहां शिफा का ये मेयार नहीं है। तो दुनिया के कंप्यूटर में अगर जाहिरी इसबाब को डाला जाए तो यह नतीजा नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है कि यहां अल्लाह ताला की रजा का अंसुर दाखिल हो जाता है। नियतें पाक हैं और नेक हैं और नियतों में खुलूस है और अल्लाह की खातिर ये लोग वहां पहुंचे हैं और अल्लाह की खातिर वहां काम कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह की रजा का अंसुर जब बीच में दाखिल होता है तो काया पलट जाती है सारे नताइज की। ये चीजें इतनी तफसील के साथ हमारे मामलात में दखल देती हैं कि अगर एक इंसान खुली आंखों के साथ मुतालिया करे तो उसको उसके लिए शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती, छोटी छोटी बातों में भी। यहां तक कि खेल के मैदान में एक मैच हो रहा है, उस मैदान में जहां बज़ाहिर शिकस्त हो जाती है एक अहमदिया टीम को, वहां अचानक काया पलटती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की रजा का उनसे बीच में दाखिल हो जाता है। एक दफा मुझे याद है कादियान में बटाले में एक ऐसा मैच हो रहा था और बड़े जोर के साथ मुकाबला था एक ईसाई स्कूल के साथ, और वहां ये इश्यू बन गया कि देखें ये मुसलमान जीतते हैं या ईसाई जीतते हैं, और उनका दबाव इतना ज्यादा था कि हमारी टीम जो बज़ाहिर कमजोर थी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्योंकि इस्लाम की खातिर एक फजल करना था, वहां ये बहाना बन गया कि हजरत खलीफतुल मसीह सानी डलहौजी से वापस जा रहे थे कादियान की तरफ, बटाले से गुजरते हुए उनकी जो नजर पड़ी कि एक हंगामा सो हुआ है तो उन्होंने मोटर चढ़ाई। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, अहमदी बहुत से नजर आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हजूर यहां तो बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है और हमारी टीम शिकस्त खा रही है और यहां तो इस्लाम और ईसाइत का मुकाबला बन गया, ये मसला हो गया, अब हम क्या करें, अब दुआ करें। तो हजरत साहब ने सफर को टाल दिया और वहीं खड़े हो गए और फरमाया कि मैं दुआ करता हूं और खेलो तुम। वो हजूर ने दुआ करवाई और देखते देखते काया पलट गई, वो अहमदी कमजोर खिलाड़ी भी उनके ताकतवर खिलाड़ियों पर गालिब आने लग गए। तो ये क्या वाकया हुआ था? कोई तब्दीली उनकी जिस्मानी हालत में नहीं हुई थी, सिर्फ अल्लाह का फजल एक खास शामिल हुआ है जिसने जाहिरी मुकाबले के बरक्स नतीजा पैदा किया। बस जब दयानतदारी आप करेंगे अल्लाह की रजा की खातिर, तो फायदा तो आप ही को पहुंचेगा। वहां भी जीती तो कादियान की टीम ही थी और फायदा बजायर खिलाड़ियों को पहुंचा था, लेकिन अल्लाह की रजा बीच में शामिल हो जाएगी, अल्लाह ताला का प्यार नसीब हो जाएगा ऐसे ताजरों को, ऐसे सनतकारों को, ऐसे साइंसदानों को, ऐसे लॉयर्स यानी वकला को। हर शोबे जिंदगी में जब वो खुदा की रजा की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे दुआएं मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो गैर मामूली खुदा का फजल शामिल होगा। बस इस लिहाज से ना सिर्फ ये कि ये कोशिश करनी है, बल्कि पूरी सखावत के साथ अपने गुर और अपने हुनर भी जमात के हजूर पेश करने। ये वो आखिरी हिस्सा है जिसकी तरफ मैं खुसूसियत से तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ताजरों में आदत होती है कि उनको कोई गुर मिल जाए, कोई दाव पेज मिले, कोई अच्छा मौका मिले, तो वो उसे अपने तक महदूद रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई और इस मैदान में दाखिल ना हो। हमारे तिब्बा में भी ये मर्ज पाया जाता है, लोगों को तो शिफा देते हैं लेकिन अपने इस मर्ज की शिफा उनको नहीं मिलती कि कोई अच्छा नुक्ता हाथ आ जाए जिससे बनी नौ इंसान को फायदा पहुंचता है, तो वो दबा के बैठ जाते हैं कि ये चुटकला फलां हकीम से ही मिलेगा। इसी तरह हमारे सनतकारों में भी ये बीमारी है, हमारे दूसरे शोभा जात जिंदगी में भी ये बीमारी आम पाई जाती है। इस बीमारी के साथ फर्द की तरक्की की जमानत तो दी जाती है बास सूरतों में, लेकिन कौमी तरक्की की कोई जमानत नहीं होती, बल्कि कौमी तनजुल की जमानत बन जाता है ये निशान। चुनाचे मशरिक और मगरिब की तरक्यात का आप मुकाबला करें या तनजुल और तरक्की का मुकाबला करें, तो एक बहुत बड़ा अमर जो कार फरमा नजर आएगा वो यही नजर आएगा। हमारे यहां ये रिवाज पकड़ गया कि जिसको कोई इल्म मिला उसने सीना ब सीना अपनी औलाद में चलाना शुरू कर दिया, और ये मुहावरा सीना ब सीना का सवाए मशरिक के मिलते ही कहीं नहीं दुनिया में। अजीब गरीब मुहावरा है और बड़ा फख्र से लोग कहते हैं कि जी ये सात पुश्तों से सीना ब सीना राज हमारी खानदान में चला आ रहा है। सीना ब सीना तो रहा लेकिन सारी कौम को दफन कर गया। मगरिब ने इसके बरक्स अपने उलूम को तरवीज दी है, जो छोटा सा नुक्ता भी किसी के हाथ आया है उसने तशहीर की है, उसकी तमाम मगरिब को उसमें शामिल किया है। नतीजा यह निकला कि हर फर्द की दौलत सारे कौम की दौलत बन गई, और एक फर्द की दौलत सिर्फ उसकी जाती दौलत ना रही बल्कि हर फर्द ने जो सीखा वो भी उसको मिल गया, और जो उसने सीखा वो उसने दूसरों को अदा किया। इसलिए हर अच्छी चीज में अल्लाह ताला ने मुसलमान को सखावत का हुक्म दिया है, और ये दूसरा हिस्सा है जो खैरात में तरक्की करने के लिए बड़ा जरूरी है। चुनांचे कुरान करीम इस नुक्ता को इस तरह बयान फरमाता है, पहले वो यकीमुन सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, कि मोमिन बंदे इबादतों को कायम करते हैं, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और फिर जो कुछ हम उनको अता करते हैं उससे आगे खर्च करते चले जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मजमून है, तरतीब भी बहुत प्यारी रखी गई है कि उनको जो कुछ अता होता है वो सिर्फ जिस्मानी कोशिशों और मेहनत से नहीं होता, उसमें उनकी इबादतों का भी दखल होता है। मालूम हुआ कि आम इंसान की अचीवमेंट का जिक्र नहीं, बल्कि ऐसे मोमिन बंदों के की खुसूसी अचीवमेंट्स या जो कुछ वो हासिल करते हैं उसका जिक्र है, जिनको जो कुछ अता होता है उसमें उनकी इबादतों का भी दखल होता है, यानी अल्लाह ताला का फजल भी शामिल होता है। ऐसी सोसाइटी जब प्याम सलात करती है तो अल्लाह ताला उनको आम बंदों से ज्यादा अता करता है, और जो कुछ उनको अता करता है वो अपने तक रोक के नहीं बैठ जाते, वो आगे उसको जारी कर देते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसीर में ये आरिफाना नुक्ता हमारे सामने बयान फरमाया कि मिम्मा रज़क़नाहुम में सिर्फ रुपए पैसे का जिक्र नहीं है बल्कि तमाम सलाहियतों का जिक्र। अगर कोई वकील अच्छा है, उसको वकालत का अच्छा नुक्ता हाथ आया है, तो वो उससे भी कौम को फायदा पहुंचा रहा होता है। किसी तबीब को अगर कोई अच्छा नुस्खा मिल गया है तो वो अपने ऊपर रोक के नहीं रखता, बल्कि वो सारी कौम को उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। किसी सनतकार को अगर कोई अच्छा नुक्ता हाथ आ गया है तो वो दूसरे सनतकारों में ऐलान करता है कि आओ ये सीखो मुझसे, इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। इस तरह उलूम की हर शाख में जिसको जो कुछ हासिल हो जाए वो खुदा की राह में खर्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसे खर्च करने वालों को इसी आयत में खुशखबरी भी दी गई है कि इस खर्च के नतीजे में जो अल्लाह की खातिर किया जाता है वो कभी भी उनके अंबाल और उनकी ताकतें और उनकी सलाहियतें खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून में एक जारी चश्मे का सा जिक्र है कि एक तरफ से निकल रहा है तो दूसरी तरफ से पड़ भी रहा है, और जिस तरफ से निकल रहा है वो सुराख उस सुराख का मुकाबला ही नहीं कर सकता जिस सुराख से पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले रस्ते को अल्लाह से जोड़ दिया। ये नहीं फरमाया कि जो कुछ वो अपनी कोशिशों से हासिल करते हैं उसको खर्च करते हैं, क्योंकि इंसानी कोशिशें तो महदूद होती हैं, उनका महसूल तो थोड़ा सा होता है, वो खर्च होकर खत्म भी हो सकता है। फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हम जो उनको देते चले जाते हैं वो उससे खर्च करते चले जाते हैं, और खुदा ताला के देने के रस्ते तो ना खत्म होने वाले हैं। अगर इंसान तमाम कायनात की ताकतों को भी खर्च कर दे तब भी अगर एक तरफ से अल्लाह से ताल्लुक कायम है तो उसके खजाने खत्म नहीं हो सकते। कैसी अजीम शान आयत है और कितना वसी मजमून इसमें बयान कर दी गया मोमिन की तरक्की का। और अगर आप गौर करें तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता हुआ वो यही कौसर है, या यूं कहना चाहिए कि उस कौसर की एक शक्ल ये भी बनती कि आपके मुत्तबईन को ये हुक्म दे दिया कि जो कुछ हम तुम्हें अता करेंगे तुमने रोक के नहीं रखना, तुमने आगे दुनिया में खर्च करते चले जाना, और इस बात के हम जामिन हैं कि तुम्हारे खजाने कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि हमारे खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। बस ये वो आला मकसद है जिसकी तरफ कुरान मुसलमानों को बुलाता है और जिसकी तरफ कुरान के इस इरशाद किताबे में तमाम जमात को बुला रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला के फजल के साथ वो अपने दयानत और तकवा के मयार को बुलंद रखते हुए महज खुदा की खातिर दुनिया की हर भलाई में दुनिया से आगे निकल जाएंगे, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना फिर दुनिया पर खर्च भी करेंगे। आपकी कोई हद नहीं है, आप तो वो कौम हैं जिनके ईमान के मुतालिक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि वो सितारों पर कमंदें डालने वाला होगा। फरमाया इतनी अजीम हिम्मत वाला इंसान होगा, इतनी बुलंद जस्त होगी उसकी कि अगर ईमान दुनिया से उठकर सुरैया पर भी पहुंच गया तो वो खींचकर दोबारा दुनिया में ले आएगा। बस जिसकी है, जिसका ईमान इस शान का हो और इतनी बुलंद हिम्मत वाला रखने वाला हो कि जिसको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी दे रहे हैं कि हां तू जाएगा और आसमान की बुलंदियों से भी ईमान को खींच के दोबारा ले आएगा, तेरे कदम सुरैया पर पड़ रहे हैं, उसके मानने वाले उसके पीछे चलने वाले हैं हम, इसलिए लाजमन हमें अपने इरादे बुलंद करने पड़ेंगे और बुलंद इरादों के साथ अपने आमाल के मेयार को भी बढ़ाना होगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। आज चूंकि बारिश हो रही है इसलिए नमाज जुमा के साथ ही नमाज असर भी जमा करवाई जाएगी। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ